14 नवंबर दिन भर दिन शनिवार, मैं हूं रेहान फदल। इस्लामिक स्टेट ने पेरिस हमले की जिम्मेदारी ली। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने कहा, पेरिस पर हमला युद्ध छेड़ने जैसा।
Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis près du stade de France,
फ्रांस में इमरजेंसी घोषित, 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा। दुनिया भर में हमलों की निंदा, पेरिस में जनजीवन अस्त व्यस्त।
Deuxième explosion au stade de France. Deuxième explosion, courez. Les attentats, barrez-vous, Charles Bar.
आपको बता दें कि आज इंडिया बोल कार्यक्रम नहीं होगा और आज के दिन भर का पूरा अंक समर्पित होगा पेरिस हमलों पर। और पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में विशेष सचिव रहे राणा बैनर्जी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 13 नवंबर की रात को हुए हमलों में अब तक 127 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इस हमले में 180 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने इन हमलों को आईएस की तरफ से युद्ध की घोषणा जैसा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि हमलावरों को फ्रांस के अंदर से ही मदद मिली थी। पेरिस में 6 जगहों पर हुए धमाकों और गोलीबारी में 8 आत्मघाती हमलावरों की भी मौत हो गई है। इसके अलावा एक आत्मघाती हमलावर के शव के पास सीरियाई पासपोर्ट मिलने की पुष्टि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये हमला मानवता पर किया गया हमला है। उन्होंने कहा कि चरमपंथ से सभी देशों को मिलकर लड़ना होगा। मोदी ने पेरिस हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चरमपंथ की परिभाषा तय करने की प्रक्रिया को अब तेज करना चाहिए।
जल्द से जल्द यूएन टेररिज्म के डेफिनेशन करें, प्रस्ताव उनके सामने पड़ा हुआ है, ताकि पता चले कि कौन आतंकवाद के साथ है, कौन आतंकवाद की मदद करता है, किसकी आतंकवाद के प्रति कृपा है और कौन है जो आतंकवाद के शिकार है, कौन है जो आतंकवाद का विरोध करते हैं, कौन है जो मानवतावाद के लिए अपने आप को खपाने के लिए।
वहीं ब्रिटेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में आज डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर के निवास स्थान का दौरा किया। वहां उन्होंने अम्बेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया। ये वो घर है जहां डॉक्टर अम्बेडकर लंदन में रुके थे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर के लंदन स्थित निवास स्थान को खरीद लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पेरिस में हुए हमलों की दुनिया भर के कई देशों के नेताओं ने निंदा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमलों को मानवता के खिलाफ चरमपंथ की क्रूर चुनौती बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि रूस हमलों की जांच में फ्रांस की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भी हमलों की भर्त्सना की है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि जर्मनी यूरोप के मूल्यों की रक्षा के लिए फ्रांस के साथ खड़ा है। फ्रांस की सरकार ने हमलों के बाद पेरिस में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। पेरिस में आने वाले गुरुवार तक प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। खेल आयोजनों को भी रद्द कर दिया गया है। पेरिस के मशहूर आइफल टावर को भी बंद कर दिया गया है। वहीं फ्रांस में हमलों के बाद 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। आज जब भारत और दुनिया के लोग रात की नींद लेकर जगे तो उनका सामना एक ऐसी खबर से हुआ जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। दुनिया की संस्कृति का दिल कहे जाने वाले पेरिस में समन्वित आत्मघाती हमलों में 100 से ऊपर लोगों की जान चली गई। आज हम पूरे कार्यक्रम में बात करेंगे इस हमले पर और हमारे साथ होंगे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में विशेष सचिव रहे और जाने माने सुरक्षा विशेषज्ञ राणा बैनर्जी। आपका स्वागत है स्टूडियो में।
शुक्रिया।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार को आत्मघाती हमलावरों ने संगीत समारोह का आनंद लेने पहुंचे युवाओं, फुटबॉल प्रेमियों और मशहूर रात्रिकालीन मनोरंजक स्थलों पर लोगों को निशाना बनाकर हमले किए। इनमें कम से कम 127 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इन हमलों के बाद फ्रांस में राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल घोषित कर दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन ISIS ने ली है। पेरिस में इन जघन्य हमलों को अंजाम देने वाले कम से कम 8 पृथकतावादियों ने आत्मघाती बेल्ट लपेट रखी थी। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इन हमलों को युद्ध छेड़ने जैसा बताया है और संकल्प लिया है कि फ्रांस अपने शत्रुओं के खिलाफ दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा। संदीप कुमार, सोनी की रिपोर्ट।
Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier à Paris.
फ्रांस के नागरिकों, पेरिस में कल जो हुआ वो युद्ध समान है और इस युद्ध में हमारा देश समुचित कार्रवाई करेगा। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई में फ्रांस जरा भी दया नहीं दिखाएगा। फ्रांस और फ्रांस के बाहर इस खतरे से निपटने के लिए हम अपने सहयोगियों के साथ कानून के दायरे में रहकर हर तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का ये बयान पेरिस में चरमपंथी हमलों के बाद आया है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 180 लोग घायल हैं, जिनमें से 80 की हालत नाजुक बनी हुई है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक बयान जारी करके पेरिस हमले की जिम्मेदारी ली है। शुक्रवार की रात पेरिस में मस्ती का माहौल अचानक मातम में बदल गया। बार में झूम रहे, रेस्तरां में खाना खा रहे, म्यूजिक कंसर्ट का लुत्फ उठा रहे और स्टेडियम में फुटबॉल मैच देख रहे दर्शक एकदम से तपसन्न रह गए जब उन्होंने दनादन गोलियां चलने और धमाकों की आवाज सुनी। बेटाकला आर्ट सेंटर, पेटाइट कंबोज रेस्तरां और नेशनल स्टेडियम के आसपास अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस दौड़ने लगीं। पेरिस के नेशनल स्टेडियम में उस समय फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी मैच देख रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। कंसर्ट हॉल में सबसे अधिक 80 लोग मारे गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि काले कपड़े पहने बंदूकधारियों ने कंसर्ट हॉल में घुसकर बंधकों को बहुत नजदीक से गोली मारी। जब पुलिस ने वहां धावा बोला तो आत्मघाती जैकेट पहने 3 हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। चौथे को गोली मार दी गई। पुलिस का कहना है कि बंदूकधारियों की संख्या 8 थी, जिन्होंने आत्मघाती जैकेट भी पहने हुए थे। कहा जा रहा है कि हमला करने वाले सभी चरमपंथी मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की तलाश जारी है जो चरमपंथी या चरमपंथियों के सहयोगी हो सकते हैं। लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में चरमपंथ मामलों के जानकार प्रोफेसर पीटर न्यूमैन पेरिस हमलों का संबंध सीरिया और इराक से जोड़ते हैं।
We know that over 1,000 French people have gone to Syria and Iraq to fight over the last 3 years. That is indeed.
हम ये जानते हैं कि फ्रांस के 1,000 से अधिक लोग लड़ने के लिए बीते 3 साल में इराक और सीरिया गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि फ्रांस के भीतर चरमपंथियों को कितना समर्थन हासिल है। ये इस्लामिक स्टेट या अल कायदा के समर्थकों की जीत की तरह है।
राष्ट्रपति ओलांद ने कंसर्ट हॉल का दौरा करके चरमपंथियों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। पेरिस हमलों के बाद राष्ट्रपति ओलांद ने एक विशेष सुरक्षा बैठक बुलाकर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। फ्रांस की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। इस दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।
राणा बनर्जी, आपने ये रिपोर्ट सुनी, आपकी नजर में पेरिस को ही क्यों निशाना बनाया गया इस स्तर के हमले का? चार्ली हेब्दो के बाद दूसरा बड़ा हमला।
जी, ये हम ये नहीं कह सकते कि केवल ये पेरिस तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि सारे यूरोप में ही इसका प्रकोप होने की आशंका है। बहुत दिनों से अबू बकर अल बगदादी अपने समर्थकों को यही कहते रहे हैं कि भाई आपको यहाँ आके लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीरिया में या इराक में, आप वहीं पर कुछ करके दिखाएँ। और कुछ दिनों पहले एंड्रू पाकर जो हैं, जो ब्रिटिश सुरक्षा सर्विस की प्रमुख हैं, उन्होंने भी इस आशंका को व्यक्त किया कि किसी भी समय ब्रिटेन में भी इस तरह की घटना हो सकती है। और इस बार जो हुई तो ये तो एक हम कह सकते हैं कि गुणात्मक और परी मान के हैसियत से भी बढ़ोती है अटैक में, जो चार्ली हेब्डो में हुआ था, तो उसमें कुआशी ब्रदर्स थे, वो उन्होंने यमन में अलकायदा के साथ ट्रेनिंग ली थी। लेकिन इस तरह के जो 7 या 8 सुनियोजित ढंग से इन्होंने पूरी सर्वे वगैरह करके, सर्वेक्षण करके इस तरह का हमला किया, तो कहा जा रहा है कि ये कुछ हद तक मुंबई 2008 वाले हमलों से मिलता जुलता ये परिकल्पना करने के बाद ये
बताइए, ये इसको आप बारीकी से देखें तो मल्टीपल साइमल्टेनियस हमला है
जी,
और इसका जो ऑपरेशनल सोफिस्टिकेशन है
जी,
इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस स्तर के बड़े हमले को छुपा के रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
जी हाँ, ये बहुत ही संगीन मामला है कि एक तो 6 स्थानों पर एक साथ हुआ, उसके बाद इनको असला मिला, अस्त्र मिले। अब यूरोप में विशेषकर इतने आसानी से अस्त्र पाना मुश्किल है काम, लेकिन जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं उसके ज़राए से ये पाए जा सकते हैं। तो जो आतंकवादी हैं वो एक मिश्रित किस्म के आतंकवादी अब बन गए हैं, जिसको कहा जाता है हाइब्रिड क्रिमिनल कम टेररिस्ट। तो अब जो तहकीकात होगी उसमें ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने सीरिया में ये कभी गए कि नहीं, वहाँ पर ट्रेनिंग पाई कि नहीं, किस तरह की ट्रेनिंग पाई, कब लौटे। अब जो 1000 से ज़्यादा लोग फ्रांस से जा चुके हैं और लौट भी चुके हैं, तो इनके ऊपर नज़र रखना या इनकी सारी गतिविधियों पर पूरी अंकुश रखना एक आसान बात नहीं है। तो इसलिए ये तहकीकात अभी करनी पड़ेगी फ्रेंच जो सर्विसेज हैं, और कुछ बातें और उजागर होंगी इस पर, तब जाके और बात स्पष्ट होगी। लेकिन इस ये बड़ी सुनियोजित सी घटना है, और ये एक आध दिन में नहीं हुई है, कई हफ्तों या महीनों से इसकी प्लानिंग रही होगी।
आपसे थोड़ी देर में और बात करेंगे। पेरिस में कल चरमपंथी हमलों के वक्त सड़कों पर हर दिन की तरह बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने क्या देखा।
There were 3 or 4 people sitting at the cafe, just sitting as one does on the chairs.
कैफे में 3-4 लोग आराम से बैठे थे, तभी मैंने हमलावर को भीतर आते देखा। मैंने देखा उसने अपनी राइफल उन लोगों पर तान दी और दनादन गोलियां चला दी। तीनों लोग फौरन नीचे गिर पड़े। हमलावर ने उसके बाद अपनी पोजीशन बदली और एक कार को निशाने पर ले लिया। उसने ड्राइवर की ओर 2 बार फायर किया और फिर कैफे में दाखिल हो गया। कंसर्ट हॉल के पास मौजूद एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी इगोर मेला देनोविच ने बीबीसी को बताया। बड़ी घबराहट थी उस समय, यहाँ तक कि पुलिस भी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमला करने वाले भी आसपास ही हैं। एक तरफ पुलिस थी, दूसरी तरफ लोग मारे जा रहे थे, और मैं इन दोनों को देख पा रहा था। पुलिस वाले कह रहे थे कि यहाँ से जाओ, लेकिन वो चारों तरफ इशारा कर रहे थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। प्रत्यक्ष दर्शियों की आवाज। दुनिया भर में इन हमलों का शिकार हुए लोगों के प्रति लोग संवेदनाएं जता रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इस हमले के बाद कई लोग फ्रांस के दूतावास के बाहर हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं।
यहाँ आना मुझे फ्रांस की क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों के बारे में फिर से सोचने को मजबूर करता है। इन मूल्यों के साथ न केवल फ्रांस खड़ा है, बल्कि हम जो लोग भी यूरोप में रहते हैं इन मूल्यों पर यकीन करते हैं।
सिर्फ एक अलग राजनीतिक राय होने के चलते फिर से ऐसा हुआ है, इससे मैं गहरे दुख में हूँ। ये हमला तो केवल पेरिस में हुआ है, लेकिन इसका असर पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में हुआ है। पूरा यूरोप बंद है और हर कोई खुद को पेरिस का ही मान रहा है।
हालात वाकई बहुत बुरे हो गए हैं। हम लोग नवंबर में होने वाले जलवायु सम्मेलन और फिर अगले साल यूरोपियन चैंपियनशिप की ओर नजरें टिकाए बैठे थे। ये सब कुछ तो ऐसे में संभव नहीं है। हमें इसका ख्याल रखना होगा, हमें इन हालातों से उबरना होगा। हम लोग अपने घरों में आराम से नहीं बैठे रह सकते।
लोगों की आवाज। और अब आइए सीधे चलते हैं पेरिस, वरिष्ठ पत्रकार वेजू नरावने के पास। वेजू, आप बताएं क्या माहौल है पेरिस में इस समय?
देखिए बेंडर, पेरिस को ऐसे कभी नहीं देखा जिंदगी में। लोग नहीं है, आज शनिचर का दिन है। क्रिसमस से चार हफ्ते पहले, पांच हफ्ते पहले, जब हर आदमी यहाँ पर अपनी क्रिसमस शॉपिंग करने जाता है, जो बड़े बड़े दुकानों में जो उनकी क्रिसमस की जो डेकोरेशंस लगाई होती है उसको देखने जाता है, अब पूरी वो बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर्स जैसे गैलरी लफायत या प्रिंटम दोनों की दोनों बंद है, सिनेमा नहीं चल रहे हैं, ओपन एयर मार्केट्स जो बहुत सारे होते हैं, कई सारे पेरिस के इलाकों में ओपन एयर मार्केट्स होते हैं वो सब बंद है, लूव बंद है, आईफिल टावर बंद है, ऐसे लगता है कि ये जो शहर है ये पूरा लॉकडाउन मोड में है इस वक्त, और इस तरह सूना साना बगैर जान के मैंने पेरिस को कभी नहीं देखा।
मैं जो कुछ इस तरह के संकेत, कुछ लोगों के पकड़े जाने की बात, कुछ सरकार की ओर से कुछ संकेत आ रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियां
एक आदमी को उन्होंने पकड़ा है जर्मनी में इसके कनेक्शन के साथ, लेकिन ये जो 8 आतंकवादी मारे गए हैं उनमें से एक को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो फ्रेंच है, जिसका जन्म पेरिस के मतलब कोई 15 किलोमीटर की दूरी पे कुरकुरोन नाम के जगह में हुआ था, वो उसके बारे में पुलिस को जानकारी है, उसकी फिंगरप्रिंट के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन किया लेकिन उसका नाम अभी तक रिलीज नहीं किया। दो और चीजें जो है ये कि एक आतंकवादी के पास एक सीरियन पासपोर्ट मिला है जो उसे कहलाता है कि वो अलेपो में उसने 90 साल में उसका जन्म हुआ था, 1990 साल में उसका जन्म हुआ था। और तीसरा जो है एक जिसने अपने आप को मतलब हाराकारी की, जिसने अपने आप को उड़ा दिया स्टेडियम के पास, वहां पर एक इजिप्शियन पासपोर्ट मिला है। हम इस वक्त ये इंफॉर्मेशन आ रही है इंफॉर्मेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से।
तो वेजू नारव ने आप हालात पर नज़र बनाए रखिए, आपसे फिर बात करेंगे संभवतः अगले कार्यक्रम में। राणा बनर्जी, आप ये सब बातें सुन रहे थे, आप सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, इन इस तरह के हमलों को बहुत नज़दीक से स्टडी करते हैं, आरंभिक संकेत क्या मिल रहे हैं कि ये ग्रासरूट अभियान है वहाँ के लोगों का या इसके इंस्ट्रक्शंस विदेश से आए हैं?
नहीं, इंस्ट्रक्शंस तो विदेश से आए होंगे ज़रूर, लेकिन ग्रास रूट्स में भी जो फ्रेंच लोग हैं जो आतंकवाद से प्रभावित हैं, उन्होंने या तो शिक्षा वहाँ ली होगी जाकर, और या तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेट हुए होंगे और बकायदा उन्होंने प्लानिंग की होगी, सर्वेक्षण किया है इस इलाके का, उसके बाद ही ये कार्रवाई उन्होंने की। तो ये एक, मैं जैसा कह रहा था कि ये एक बढ़ोती है, पहले जो होता था ये अकेले भेड़िए टाइप, क्या लोन वुल्फ अटैक एक आध जो हुए, काफ़ी हुए, फ्रांस में भी हुए, कनाडा में भी हुए और मुल्कों में भी वेस्ट में हुए, लेकिन इसका उद्देश्य कॉमन है कि वेस्ट के खिलाफ कुछ कार्रवाई करके दिखाओ। लेकिन इस तरह की पूरी सुयोजना से आतंकवाद का एक करना सारे पेरिस जैसे शहर में, तो ये पहली बार हुआ है।
ये बताइए, हालात इस तरह के हो चले हैं कि अब बड़े शहरों की रक्षा करना लगभग असंभव हो गया
है? जी, एक ये बहुत मुश्किल है कि सॉफ्ट टारगेट्स जो होते हैं आसानी से जिसको कि लक्ष्य बनाया जा सकता है, तो इसको संपूर्ण रूप से रोकना या करना, इसके लिए बहुत ही सुदृढ़ जो है सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और इंटेलिजेंस होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी गैप्स रह जाते हैं, तो ये मुश्किल है।
दुनिया भर से इन हमलों की निंदा की खबरें आ रही हैं। सबसे पहले अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया, और उसके बाद तो विश्व नेताओं की प्रतिक्रियाओं का तांता लग गया। रोहित जोशी की रिपोर्ट।
फ्रांस में हुए इन चरमपंथी हमलों के बाद दुनिया भर में इसकी आलोचना हो रही है। दुनिया भर के कई महत्वपूर्ण नेताओं ने इस हमले की निंदा करते हुए फ्रांस के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका इस कठिन समय में फ्रांस के साथ खड़ा है।
Paris itself represents the timeless values of human progress. Those who think that they can terrorize the people of France.
पेरिस अपने आप में मानवीय प्रगति के मूल्यों को बयान करने वाला शहर है। जो लोग ये सोचते हैं कि वे फ्रांस के लोगों में दहशत भर देंगे और उन्हें उनके मूल्यों से डिगा देंगे, वे बिल्कुल गलत हैं। अमरीकी लोग फ्रांस के लोगों के स्वतंत्रता और खुशी से जीवन जीने के नज़रिए से प्रेरणा लेते रहे हैं। इस भयानक त्रासदी के वक्त हम स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उन मूल्यों को फिर से याद कर रहे हैं जिन्हें फ्रांस के लोग बहुत गहराई से मानते हैं। इन्हीं मूल्यों के साथ हम भी फ्रांस के साथ खड़े हैं।
ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। वहीं जर्मनी ने भी अपने पड़ोसी देश फ्रांस के अहम शहर पेरिस में हुए इस हमले की आलोचना की है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने इस घटना की आलोचना करते हुए कहा है कि जर्मनी फ्रांस के साथ है।
Dieser Angriff auf die Freiheit gilt nicht nur Paris. Er meint uns alle und er trifft uns alle.
आज़ादी पर हुआ ये हमला सिर्फ पेरिस पर नहीं हुआ है, ये हमला हम सभी पर है और इसका असर हम सभी को होगा, इसलिए इसका जवाब भी हम साथ मिलकर देंगे। सबसे पहले लोगों की सुरक्षा का सवाल है, इसके लिए जर्मन सरकार फ्रांस की सरकार के साथ करीब से संपर्क बनाए हुए है और वो हर वो मदद देने को तैयार है जो हम दे सकते हैं। हम वो सब कुछ करेंगे जो कि इन हत्यारों और इनके मददगारों के खात्मे के लिए किया जा सकता है और साथ ही हम चरमपंथ के खिलाफ साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।
उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी एक ट्वीट के जरिए इस हमले की निंदा की है। उन्होंने लिखा है,
पेरिस में आज हुई घटना से मैं स्तब्ध हूँ। हम लोग पूरी तरह से फ्रांस के लोगों के साथ हैं। हमसे जो भी मदद हो सकेगी हम करेंगे।
इस हमले पर मध्य पूर्व के देशों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सऊदी अरब ने पेरिस में हुए इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि किसी भी किस्म के चरमपंथ के खिलाफ और अधिक मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा खोलने की जरूरत है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर ने कहा,
मैं कल हुए दर्दनाक हमले के खिलाफ फ्रांस के लोगों और सरकार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। ये हमला सभी किस्म की नैतिकता और हर एक धर्म के मूल्यों के खिलाफ है। सऊदी अरब लंबे समय से हर किस्म के आतंकवाद से लड़ने के लिए और अधिक मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जाने की बात करता रहा है।
ये थे सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर के शब्द। इस बीच अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट के जरिए इस घटना को दुखद और दर्दनाक बताया है। उन्होंने मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं और लिखा है कि वे पेरिस के लोगों के साथ हैं। दूसरी तरफ वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के प्रवक्ता फेडेरिको लोम्बर्दी ने भी पोप के हवाले से पेरिस की घटना की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र और नाटो के महासचिवों की ओर से भी पेरिस के इस हमले की निंदा की गई है। कनाडा, रूस, दक्षिण कोरिया, तुर्की और अन्य कई देशों ने भी इस हमले की निंदा करते हुए फ्रांस के साथ एकजुटता दिखाई है।
विश्व नेताओं की प्रतिक्रियाएं, ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। आपको बता दें दोबारा कि आज इंडिया बोल कार्यक्रम नहीं हो रहा है, पूरा कार्यक्रम पेरिस हमलों पर समर्पित है। आइए देखते हैं दुनिया भर के अखबारों ने इस हमले को किस तरह से कवर किया है। संकलन के साथ विनीत खरे।
फ्रांस के अखबारों मैगजीनों में इस हमले को भयानक बताया गया है। अखबार लेमोंड ने एक ट्वीट में हमले को आतंकी हत्या और संहार बताया है। ज्यादातर अखबारों ने हमलों, बम विस्फोटों की तस्वीरों को पहले पन्ने पर छापा है। मीडिया में इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। अल अरबिया समाचार चैनल से बात करते हुए पेरिस के एक विश्लेषक ने इसे अमेरिका के 11 सितंबर हमले के बाद किसी पश्चिमी देश पर किया गया सबसे बड़ा हमला बताया। मध्य पूर्व स्थित अल अरबिया टीवी चैनल की वेबसाइट पर छपे एक लेख में पत्रकार मोहम्मद छबेरे लिखते हैं कि फ्रांस पर हमला उसे चेतावनी है कि वो कमजोर लोगों के साथ खड़ा न हो, वो अपने मूल्यों को छोड़ दे और सीरिया में अपनी नीति में बदलाव करे। ब्रिटेन के अखबार गार्डियन में विश्लेषक नैटली नोगेरीड लिखती हैं कि इस हमले से मुसलमानों में डर बढ़ेगा और उन्हें आतंकवाद से और जोड़ा जाएगा, साथ ही दक्षिणपंथी समूह ज्यादा नफरत फैलाएंगे। ब्रिटेन के एक और अखबार द टेलीग्राफ में विश्लेषक कॉन कफलिन लिखते हैं कि पेरिस पर हमले ब्रिटेन सहित प्रमुख पश्चिमी देशों के लिए संकेत है कि इस्लामिक स्टेट जैसे गुट उनके लिए किस तरह के खतरे पेश कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द एज ने संपादकीय में इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि जो लोग मासूमों का कत्ल करते हैं उनके लिए इस निंदा का कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो इस हमले की निंदा करते हैं क्योंकि ऐसा किया जाना चाहिए। रूसी मीडिया में पेरिस पर हमले पर लगातार कवरेज जारी है। सभी टीवी चैनलों पर हमले पर आश्चर्य और दुख जताया गया है और आतंकवाद के विरुद्ध फ्रांस का साथ देने की बात कही गई है। साथ ही इस हमले को यूरोप में प्रवासियों के प्रवेश के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक टीवी चैनल पर एक टीवी प्रस्तोता ने कहा कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि पश्चिमी देश कमजोर दलीलों को किनारे रखकर रूस के साथ एक दुष्ट ताकत के साथ लड़ाई में हिस्सा लें। एक पत्रकार ने दुख जताया कि मैगजीन शाली एब्डो पर हमले के बाद भी फ्रांस में लोग चौकस नहीं हुए। भारतीय अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लिखते हुए विश्लेषक नलिन मेहता कहते हैं कि फ्रांस के लिए सबसे बड़ी समस्या देश के भीतर बढ़ता आतंकवाद का खतरा है और माना जाता है कि कम से कम 1500 फ्रांस के नागरिक इस्लामिक स्टेट के साथ लड़ने सीरिया और इराक में हैं। अमरीकी मैगजीन न्यूजवीक ने हमले पर इस्लामिक स्टेट समर्थकों के ट्विटर पर खुशियां मनाने की खबर छापी है। उधर अफगानिस्तान के निजी टीवी चैनल पर बोलते हुए एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पता चलेगा कि आतंकवाद एक अफगान समस्या नहीं है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है।
दुनिया भर में पेरिस हमले का कवरेज। राणा बनर्जी, टेरर अटैक्स के बारे में कहा जाता है कि वो जो टेररिस्ट हैं, जो तथाकथित चरमपंथी हैं, वो ये सब हमले पब्लिसिटी के लिए करते हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष आप नहीं समझते? पब्लिसिटी तो मिलती है लेकिन लोगों की गुडविल वो खो देते हैं।
नहीं, देखिए ऐसा है, जो इनकी इनका जो आदर्शवाद है, आइडियोलॉजी है, उसमें एपोकलिप्स का बहुत महत्व है कि जो भी दुनिया में जिसके खिलाफ भी कोई अत्याचार हुआ है उसको सब कुछ सही करने का यही एक उपाय है कि आप आइडियोलॉजिकली इस्लामिक स्टेट को मिल जाइए, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब जिसके खिलाफ भी उत्पात हुए हैं उसको एक सुलह मिलेगी कि भाई बदला ले लिया हमने। तो इस आधार पर ये सारे काम होते हैं और लोगों को ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेट कर देते हैं कि इस तरह के तुम काम करो, तो ये इसलिए होता है। तो गुडविल की चिंता ये नहीं करते।
और ये पूरा आप तो आपने बहुत दिनों तक भारत की सुरक्षा व्यवस्था को देखा है, आप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में भी रहे हैं, ये जो पूरा दुनिया में जो भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, भारत के लिए क्या संदेश है इस पूरे हमले से? भारत भी बहुत वल्नरेबल है, आप मानेंगे? और क्या सीख लेनी चाहिए भारत को?
सबसे बड़ी सीख तो ये है कि जो चीज़ मुंबई में हुई 26/11/2008 को, वो फिर हो सकती है। जो संस्थाएं हैं, लश्कर ए तैयबा या जैश जैसी संस्थाएं, इनकी मनोवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया है अभी तक। तो हमको सतर्क रहना है कि ये अपने जरिए या जो भारत में कुछ इनके छोटे गुट हैं उनकी सहायता से फिर इस तरह की कोई बड़ी घटना न कर दें, तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है।
लेकिन भारत में तैयारी है क्या ये?
मैं आशा यही करता हूं कि तैयारी आगे से पहले से तत्पर है, लेकिन इसके बारे में इतना मुझे ज्ञान नहीं है कि आज कितनी तैयारी है, कितना होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है और कोई भी कंप्लेसेंसी इसमें नहीं होनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका राणा बनर्जी स्टूडियो में आने के लिए, और पूरा इस पूरा जो घटना हुई है उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो चलते चलते एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 13 नवंबर की रात हुए हमलों में अब तक 127 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इन हमलों में 180 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने इन हमलों को आईएस की तरफ से युद्ध की घोषणा जैसा कदम बताया है। पेरिस में 6 जगहों पर हुए धमाकों और गोलीबारी में 8 आत्मघाती हमलावरों की भी मौत हो गई है। एक आत्मघाती हमलावर के शव के पास सीरियाई पासपोर्ट मिलने की पुष्टि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। मोदी ने पेरिस हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चरमपंथ की परिभाषा तय करने की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। फ्रांस की सरकार ने हमलों के बाद पेरिस में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। कई यूरोपीय देशों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पेरिस में हुए हमलों की दुनिया भर के कई देशों के नेताओं ने निंदा की है। ब्रिटेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में भीमराव अंबेडकर के निवास स्थान का दौरा किया। वहां उन्होंने अंबेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया। रूस के ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि डोपिंग के मामलों में गंभीर आरोप लगने के बाद रूसी एथलेटिक्स संघ बड़े बदलावों के लिए तैयार है। अलेक्जेंडर जुकोव ने कहा कि ये बदलाव जल्द से जल्द करने होंगे ताकि रूसी खिलाड़ी 2016 के ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले सके। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की राजेश चौहान ने, रेहान फदल को, सभी साथियों के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।